बहुत तुम की स्तुति प्रशंसा करके जो हम मांगे, मांगने से दधीची पहले बार खोल दिए एक बात फिर उनका। जब दधीची की इस प्रकार बात सुने तो सारे देवताओं का एक बार मुंह सूख गया, बोले पता नहीं ये राजी होगा कि नहीं। बोले देखिए आप जो कहते हैं सही कहते हैं, लेकिन आप जैसे निर्मल यशस्वी जिनको बड़े बड़े देवता बड़े बड़े योग्य पुरुष आपके जसगान करते हैं, कितने बड़े कीर्तिमान यशस्वी पुरुष आप थे, इतने दयालु है आपने, इतने प्रभावशाली, आपके लिए क्या परोपकार के अदय है, परोपकार करने के लिए आप तो कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ तक कि शरीर भी दे सकते हैं। देखिए दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक मांगने वाला एक देने वाला, एक जाचक एक दाता, दो होते हैं भैया। और सच बता है दोनों के प्रकृति के हिसाब से, जाचक जो होते हैं तो स्वार्थ पर होते ही, उनको उनको मतलब आप कहीं इसलिए मांगते हैं, वो जो निस्वार्थ होते मांगते क्यों, तो उनको तो जरूरत है, स्वार्थ पर है। अगर उस स्वार्थ पर जाचक को जो मांगने वाला को जिनको मांगता है दाता का डिफिकल्टी की पता चल जाए, उनके तकलीफ की उनको पता चले तो मांगे गए, तो क्यों मांगते भाई उनके ये दिक्कत है, तो मांगे जाए। तो मानो ये बात कहते हैं कौन ना दधीचि ऋषि के, बोले आप जो बात कहें, दो प्रकार व्यक्ति होते, मैं तो आपके लिए कहता हूँ आप लोग जाचना करने के लिए आए हैं, लेकिन जाचक इतने स्वार्थ पर है, अगर उनको पता चलता कि दाता को कितने कष्ट होगा, मतलब दाता मतलब अपने को देंगे क्या मांगते हैं, अपने कोई दूसरे को मांगते हैं, क्या मांगते हैं, हड्डी दे दो, अरे हड्डी देने के लिए मुझे शरीर छोड़ना पड़ेगा है ना, चमड़ी उतारना पड़ेगा, और जिंदा तो उतारा कोई देगा नहीं, मेरे अस्थि कंकाल से उस हड्डी लेना चाहते हैं, तो कितने कठिन बात है, कितने दर्द यंत्रणा में स्थिति है, शरीर को काट करके हड्डी को निकाल लेना, अगर ये कष्ट आपको अनुभव होता आप मांगते हैं, कभी नहीं मांगते, क्योंकि आपको तो नाम देवता है, कोई देवगुण नहीं है, विवेकहीन है, आप पशु भेड़ शेर की तरह है, देखकर खा जाना चाहते हैं, इसलिए बोले हड्डी चाहिए। अरे हड्डी देने में जो दिक्कत जो कष्ट है अगर आपको महसूस होता तो ये सब मांगते हैं, ये आपको अनुभव ही नहीं। ये बात सुनकर देवता बोले बात तो आप सही कह रहे हैं लोग जी, लेकिन हम हमारा बात भी सुन लीजिए ना, क्या ना, हम तो जाचक है स्वार्थप्रत है ही, लेकिन जो दाता होते हैं ना उनको भी स्वार्थप्रत नहीं होना चाहिए, आप दाता है, आपको अगर पता चले हमारा विपत्ति क्या, हम मरने के लगे में पड़े हैं, सारे हमारा अस्त्र शस्त्र बलवीर जो खा गया हो, कभी भी हमको खा जाएगा, सारे देव समाज लोप हो जाएंगे, ये महाविपत्ति में पढ़कर काम है, हमारे विपत्ति का आपको अगर ध्यान होता आपको पता होता तो आप ना कभी कर ही नहीं सकते, आप ना कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको हमारे विपत्ति के पता नहीं है। अब इसीलिए आप अपने शरीर के लिए बहुत चिरकाल तक जीवित रहना चाहता है, उनको आराम देना चाहते हैं, और आपके अंदर ऋषिपन कहाँ है, अब ऋषि है, ऋषि के अंदर जो विवेक होना चाहिए आपके अंदर नहीं, आप तो पशु की तरह है, आप शरीर को स्वस्थ मानते हैं, आराम देना चाहते हैं, ये दोनों दोनों प्रकार कहते हैं। अगर जाचक दाता का कष्ट को जानता मांगेगा नहीं, और दाता अगर जाचक का कष्ट को जानेगा तो ना नहीं कर सकता, जो इस प्रकार बात कहे और कह करके मुंह मोड़ दिए, बोले ना कर दीजिए हम क्या है, मरेंगे और क्या, ऐसे मरते ऐसे मरते और क्या करें, चलते भगवान को बोले अल्टरनेटिव बता दो, मना कर रहा है तो इसे जब कहकर मुंह मोड़कर हताश होने लगे, तब दधीचि जी बोले बोलो आओ आओ ऐसा बात नहीं है, मैं तो आपके मुख से कुछ धर्म के बात सुनने के लिए ऐसी बात कहा, लेकिन धर्म के बात कुछ आप कहे नहीं, कुछ चतुराई बात आप कहे, धर्म आप जानते नहीं क्या, इतने स्वार्थ में फंसे हुए धर्म भर कुछ नहीं जानते क्या कहेंगे, चलो मैं ये सब नहीं मानता हूँ, लेकिन आपके भगवान के द्वारा पोस्टेड है बड़े बड़े पूरे ब्रह्मांड के मेंटेनेंस मैनेजमेंट में आप सब बड़े बड़े दायित्व पर है, आप लोग आए मेरे दरवाजे पर और इतने बड़े विपत्ति में फंस कर आए हैं और निर्लज्ज होकर मुझे मांग रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं आपको धर्म की बात जानने के लिए थोड़ा परीक्षा के लिए इस रूप क्या किया था। सच ऐसा मत मानो, मेरा मनोभाव ऐसा नहीं है। यद्यपि मेरा ये शरीर मुझे बहुत प्रिय है, बहुत मेरा प्रिय है, यानी पर भी मैं आपके कल्याण के लिए इसको देना चाहता हूँ। देने के लिए तैयार, हंस खिल गया, राजी हो रहा है, लाओ इधर, मैं देने के लिए तैयार हूँ। अरे क्यों नहीं दूंगा बताओ, अगर आज मैं शरीर नहीं छोड़ता तो शरीर मुझे छोड़ देगा, पर कब छोड़ेगा बिना नोटिस बताएगा भी नहीं। मैं मेरे शरीर को मेरे कितने मेरे दुष्ट के शरीर कैसे छोड़ूंगा और प्यार करके रखूंगा और मेरे बात मानकर रहेगा, नहीं, बिन बताए कब मुझे धक्का देकर निकल जाए, मुझे बताएगा नहीं। तो मैं अगर उसको ना छोड़ू वो मुझे त्याग देगा, मैं त्यागूंगा। तो इसलिए जब त्यागना ही, वो मुझे जब त्याग देगा तो क्यों ना पहले मैं त्याग दूं। तो उदाहरण देते हैं, जैसे आप लोग यहीं भद्र व्यक्ति बैठे हो, सब अपने समझदार साधु भद्र व्यक्ति समाज में बैठे हो, अगर वाणी में आपको पता चला कि देखो 9:15 बजे तक तो यहाँ बैठना, अगर 9:30 बजे तक कोई नहीं किया, रूम खाली नहीं किया, सिक्योरिटी आएगा, गले में धक्का देकर निकालेगा, तो भैया जो जेंटलमैन हो तो भाई 9:30 से पहले अपन बाहर चले जाए, क्यों गले धक्का खाए, यही तो भद्रता है ना। तो इसीलिए हमको पता है कि शरीर हमको निकाल ही देगा, शरीर छोड़ देगा, रहेगा नहीं हमारा साथ, तो क्यों ना हम पहले से व्यवस्था कर ले, हमें पूछो। तो ये अच्छा है, जब छोड़ना ही है, छोड़ना करेगा हमको छोड़ देगा, तो फिर उचित कार्य के लिए उचित समय में आप जैसे देवता भिखारी बनकर जाच बनकर मेरे सामने आए, आप समझ से देव समाज के कल्याण के लिए उसको छोड़ू, तो उससे बढ़कर छोड़ना कितने बढ़िया काम थोड़ी हो सकता। पता नहीं छोड़ेगा किस काम के लिए छोड़ेगा, क्या होगा परिणाम पता नहीं। अब तो इतने बड़े परिणाम हो, संपूर्ण देवता आकर के मेरे जाचक मंदिर बैठे, तो शरीर तो ऐसे छोड़ना था, आपके कल्याण के लिए अवश्य छोड़ूंगा, आप चिंता मत कीजिए। उनको बुला करके बैठाया, बोले देखो मैं आपके धर्म की बात बताता हूँ, आप तो सुनने के लिए। बोले किसी भी देहधारी, कोई भी प्राणी आपने देह धारण किया है, उसमें तो बाकी पशु पक्षी की समझ है नहीं, मनुष्य देवता आदि की भी समझ है, इन प्रकार के देहधारी प्राणियों का अगर इसी देह के द्वारा अपना कुछ नहीं होता, अपना कुछ करने से आपने केवल कष्ट देगा और मर के जाएगा, अपना कुछ बनने वाला है नहीं, केवल समस्या क्रिएट करता और उनको हम मर पड़ कर मेंटेन करते हैं। लेकिन इसी का एकमात्र श्रेय, एकमात्र उसका सिद्धि है, इस शरीर को अगर परोपकार में लाता, अगर इस देह के द्वारा कोई दुखी प्राणी के ऊपर दया नहीं किया, कोई दान धर्म नहीं किया और कोई कीर्ति जस कमाने के लिए यूज नहीं किया, धर्म के लिए, कीर्ति के लिए या परोपकार दया करने के लिए, दीन काम के लिए अगर शरीर यूज नहीं हुआ, तो स्थावर जड़ प्राणी के लिए भी वो कुछ सिद्ध है, तो उनको निंदा करेंगे जी, ये तो पत्थर से भी गई लेते हैं, पेड़ पौधे से भी गई लेते हैं, ऐसे निंदा करेंगे, निंदित होगा। तो इसलिए सबसे उचित कार्य है, अगर इस शरीर के द्वारा परोपकार किया जाए, क्यों, क्योंकि इस शरीर का ये हमारा है ही नहीं, हम सोचते हैं हमारा शरीर, लेकिन सच्चाई में इस शरीर के मालिक तो और तीन बोलते हैं हमारा है, कौन बोलते, लोमड़ी सियार और कुत्ते बोलते हैं बड़ा मोटा तागड़ा है, कब मरेगा हमारा 15 दिन का खुराक चलेगा, वो दिन गिनते हैं बैठकर, क्योंकि हम जितने चर्बी हो, जितने प्रोटीन हो, ड्राइफ्रूट माल खाते हैं, सब उनके पेट में जाएगा हमारा क्या, तो वो बैठकर सोचते हैं कि हमारा कब कोई महीना 15 दिन का खाना मिलेगा, कब मरेगा, ये सारे हम मेंटेन स्टॉक रखेंगे, वो खाएंगे, वो तो उनके काम के लिए। बोले शरीर में तो तीन ही गति होता है, चौथा है ही नहीं। बोले अगर ऐसे कहीं मर गया तो वो लोग खाएंगे, महीना 15 दिन खाएंगे नोच नाच करके, अगर कोई घर में मरा तो उसको लेकर के जला देंगे तो राख बन जाएगा, अंतिम परिणाम उसका राख। अगर कोई कोई होते हैं जलाते नहीं, वो नहीं करते हैं, गाड़ देते हैं, मिट्टी में गाड़ देते हैं तो कीड़ा हो जाता है। तो पीड़ भस्म कीट बोले पशु खा जाएंगे तो टॉयलेट कर देंगे, इस शरीर का अंतिम परिणाम पशु के टॉयलेट बन जाएंगे, जला देंगे तो राख बनेंगे, उगाड़ देंगे तो कीड़े बनेंगे। यही तीन तो इस शरीर के अंतिम फाइनल डेस्टिनेशन है, अंतिम परिणाम। बोले इस प्रकार पराए कुत्ता सियार गीद के द्वारा खा जाएंगे, यही वो बाकी कोई काम का नहीं होगा। हमारे लिए तो कुछ काम नहीं, टेंशन बढ़ाता है, परिवार के लिए भी टेंशन होता है और बाद में उन्हीं के द्वारा भोज्य पदार्थ होगा। ऐसे शरीर के द्वारा अगर जीते जी कुछ परोपकार नहीं कर पाए तो आप सबसे निंदित थे, हर चीज से आप गए। तो इसलिए जीते जी परोपकार कर लेना चाहिए। इस शरीर का यही एकमात्र ध्येय वस्तु है, ये एकमात्र श्रेय वस्तु है, इसको कहते हैं। ये कहकर के उदाहरण देते हैं कि भगवान कृष्ण भागवत में वेणुगीत में कहे, बलराम आदि समस्त गोपी सखाओं कहते हैं कि एतावान जन्म साफल्यम देहिनाम यह देहिषु। बोले कोई देहधारी प्राणी का केवल इतना ही जन्म की सफलता है, एतावत एव जन्म साफल्यम, केवल इतना ही जन्म की सफलता है। जो शरीर धारण के जन्म हुए हैं उनका जन्म धारण करने का केवल इतना ही सफलता है। एतावत जन्म साफल्यम देहिनाम यह देहिषु, क्या प्राणेर अर्थेर धियावाचा श्रेयम आचरणम सदा। आपने प्राण के द्वारा, अपने बुद्धि के द्वारा, अपने वाणी के द्वारा श्रेय आचरण करो, यही इस देह का समुचित कार्य है, इतनी सफलता है। भगवान साक्षात कहते हैं, बोले कैसे श्रेय क्या है? बोले संसार में दो प्रकार के काम करते हैं, एक श्रेय एक प्रेय, उनको ठीक से जान लेना चाहिए। प्रेय क्या है, श्रेय क्या है? बोले दोनों ही अच्छा के लिए है। इससे प्रेय जो है जो इमीडिएट बेनिफिट देता है, तुरंत आपको सुख देने वाला जो कार्य है वो प्रेय है, और तुरंत सुख देगा और थोड़े घंटे दो घंटे के बाद फिर दुख देना शुरू कर देगा। और श्रेय क्या है, ना तुरंत दुख नहीं देगा, तुरंत थोड़ा गड़बड़ घटना मटरा दुख लगा, लेकिन बाद में आत्यंतिक काल पर्यंत अनंत काल तक सुख ही देता रहेगा, फिर दुख हो ही नहीं सकता। इसी को भगवान गीता में कभी कभी कहते हैं, जो जत तक्रे विषम इव परिणाम अमृतोपमम, जो पहले शुरुआत में विष जैसा लगता है लेकिन परिणाम में अमृत जैसा बनेगा, और जत तक्रे अमृत, जो पहले से अमृत जैसा लगता है बाद में विष बनेगा, यही श्रेय होते हैं। जैसे कभी कभी हमको अभी गर्मी लगता है, बड़ा गर्मी होता है, प्यास लगता है, अरे फ्रीज से निकाल करके आइस डाल करके आइसक्रीम में फिर आइस डाल करके और कोई सेंटमेंट डाल करके उसे खा जाते हैं, दो घंटे के अंदर ट्रांसलेट हो जाता है गले में इन्फेक्शन, दो घंटे के परिणाम तुरंत जो खाते हो वाह 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 कितने अच्छा कितने अच्छा, खाना खत्म पेट में गर्मी और इन्फेक्शन गले में, ये है प्रेय, इमीडिएट इफेक्ट देता है। ठंडी के समय गर्म गर्म पकौड़े गोभी आलू पालक के ऊपर तेल टपकता हुआ मिर्ची डाल करके, अरे दस बीस खा जाओ, और खा करके हाथ धो कर आया पेट गर्म, पता नहीं अवसर हुआ कि क्या होगा, बस दो चार घंटे में परिणाम भी समय, ये सब प्रेय वस्तु, इमीडिएट तो अच्छा लगता है तो कुछ समय के बाद फिर मर्द, ये होता है प्रेय। श्रेय होता है नहीं, आप अभी गर्मी के समय में नीम के पत्तल ला करके उसमें साग बनाओ, नीम के फूल की पत्ती इतनी चिरी इस प्रकार खाओ, अरे इसी इतने कड़वा, लेकिन खा लो किसी भी प्रकार से दो चार, और अंदर में जाकर पेट के लिए इतने उपादेय होगा अमृत, ये श्रेय है हमेशा के लिए आप अच्छा करें, लेकिन इमीडिएट अच्छा नहीं लगता। तो इस प्रकार श्रेय वस्तु जो शुरुआत में थोड़ा दुखद होगा लेकिन हमेशा के लिए आपको फायदा देगा। तो इस प्रकार श्रेय आचरण सदा, कि वास्तविक श्रेय क्या है, बोलते हैं कि जो ये शरीर उधर अपना तो कुछ कर ही नहीं सकता, अपना कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि सारे बाहरी वस्तु है, हमारे इंद्रिय भी सब बाहरी दृष्टि है, सब बाहर से माल बाहर के काम के लायक है, अपना काम के लिए है ही नहीं लायक, आपने लिए लायक है ही नहीं। अगर आपने लिए कुछ करना चाहते हो तो बाहर के कार्य करो तो ही तेरा कल्याण है। इसी को भगवान चैतन्य महाप्रभु खुलेआम डिक्लेयर किए, भारत भूमि ते एटलीस्ट भारत भूमि ते मनुष्य जन्म है लेजार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार, परोपकार कर यही जन्म के सफलता सार्थकता यही सिखा। तो भगवान कृष्ण ही कहते हैं, पेड़ों के उदाहरण दिए, बोले पेड़ देखो ये पेड़ है कितने परोपकारी है, उनका जीवन सफल है, ये पेड़ों का जड़ से लेकर के पत्ता फूल फल पर्यंत अपना कोई काम के नहीं आता, सब दूसरे के काम में आता है। उनको कोई पत्थर फेंकता है पक्के हुए फल देते हैं, आप पत्थर फेंकेंगे है उसका सर तो बोलेंगे, उनको काटेंगे उनको लकड़ी देगा, उनको नोचेंगे पत्थर देगा, जो कुछ अत्याचार करेंगे केवल उनके परोपकार करेगा। यहाँ तक कि गर्मी में बहुत परेशानी हो रहे हैं, बहुत देश गर्मी होता है, कुछ नहीं जाकर पेड़ के नीचे खड़े हो गए, कितने ठंडी ठंडी शीतल छाया प्रदान करता है, आप बिना मांगे आपको परोपकार करता है, और आपने लिए कुछ मांगता है पेड़, खड़े खड़े कोई छतरी नहीं, ऊपर से कोई ढांचा नहीं, धूप इतने सहता है, बारिश इतने होता है, कभी कोई धूप में सूख सूख करके मरने लग मुरझा जाता है पेड़, कभी मांगता नहीं भैया एक आध लीटर पानी डाल दो मैं मर रहा, कभी मांगता नहीं, मर ही जाएगा लेकिन पानी मांगेगा नहीं, हम कुछ भी आशा नहीं करता आपके लिए, केवल जीवन पर्यंत जड़ से लेकर के पत्ता फूल पर्यंत केवल दूसरे की भलाई के लिए, तो ये जीवन उसका देखिए, यही से सभी प्राणियों का जीवन होना चाहिए, यही जीवन देहधारियों का देह का भक्ति का सफलता है, इसलिए भगवान कहते बड़े जन्म साफल्यम श्री आचरण, श्री आचरण तो प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखते बोले, मैं इसलिए अपील करता हूँ सबको, कई कई अनुष्ठान होते हैं PWD पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट सरकार की तरफ से है, और भी कई सब है, वेलफेयर मतलब लोगों के कल्याण करने के लिए जन कल्याण विभाग, बोले लेकिन ये वृद्धों को पता ही नहीं कल्याण है क्या चीज, उनको पता नहीं कल्याण होता क्या, शादी करना कल्याण होता है, बर्बाद मैंने क्या उनको पता ही नहीं कल्याण क्या होता, तो किसे कल्याण करेंगे, बोलते हैं लोगों को बहुत बुद्धि लगा करके तो खाना बांटते हैं, बोलते हैं हम परोपकार करते हैं खाना बांटते हैं, कोई कपड़ा बांटते हैं, कोई दवाई बांटते हैं, बोले इसमें वास्तविक श्रेय नहीं होता, ये सब प्रेय है श्रेय नहीं। एक छोटे सी कहानी से उसको समझाते हैं, जैसे आप लोग का टूर जाता रहता है तो आपका यहाँ से पंजाब का टूर निकला, वो जाएंगे कहाँ रामेश्वरम श्रीरंगम जा, बहुत लंबा टूर जाएंगे, ट्रेन में गए सब और तीन दिन तो लगता है पहुँचने में वहाँ, और उनका भाषा अलग है, सब गड़म बड़म बोलते रहते हैं, हमको समझ में नहीं आता, हाँ लेकिन अब देखे गए रंग क्षेत्रों, उनका विशाल फेस्टिवल हो रहा था, हजारों लाखों की भीड़ था, हाँ उनका पाठोत्सव था, अरे इतने लाखों की भीड़ में हम यहाँ से गए थे, हम हिंदी के अलावा कुछ बोलना नहीं आता, उनका भाषा वो ना हम समझते हैं, हमारा भाषा वो समझते हैं, कुछ नहीं भीड़ में और किसी का लड़का है गायब हो गया, और बेचारे ढूंढते ढूंढते सबको वापस आने का टिकट था, किसी का फ्लाइट का किसी का ट्रेन का, और कितने अनाउंसमेंट कराए पुलिस में दिए, वो भी अपना भाषा जैसे भी नाम तो लिखा है कुछ मिला नहीं, वापस आ गए दुखी हो, लड़का इधर खो गया तो बड़ी दुखी हुए, अब गया अपने भिड़बड़ गए थे, वो क्या गया वो पता नहीं क्या उसके भाग्य में था, समझा दिए जो क्या हुआ, तो बेचारा लड़का इधर भटक रहा था, तो एक कहीं यहाँ का लोग कुछ नौकरी मिला था, कौन काम में गया था, जाते जाते रोड में उसे मिल गए, देखा देखा लगता है ना हमारा तरह तो है यहाँ का लड़का, उन्होंने पूछा क्या है इसे, ना हाँ इसे ना क्यों ना, अरे बड़े भूख लग रहा है कई दिन से खाया नहीं ठीक से, यही से घूम रहा हूँ, अरे इतनी भूख लगता है, मैं तो पहचानता हूँ तेरे पिताजी को, चलो चलो मेरे साथ, उनको लेकर गया बढ़िया से होटल में लाकर, जो मर्जी खाओ खूब पेट भर के खिलाया, कमेंट किया अपना खुशे ना खुश चला, उपकार तो किया उसका खिलाया, और एक व्यक्ति महीना के बाद उनको मिला, वो भी यहाँ तरह का गया था पहचान के, तो बोला अरे तू क्या करता है, अरे बहुत ठंडी लग रहा है, कपड़ा तक नहीं है, कोई घर वाली थरथर कांप रहा था। तो उनको बोला चलो, उनको वस्त्र भी खरीद के दिया, विंटर क्लोथ भी दिया, बढ़िया से सब जर्सी फर्सी क्या सब दे करके और खुशी होकर करके आगे लोग चलो छुटकार किया। और एक व्यक्ति फिर मिला था यहाँ का पहचान, वो भी बोला तुम ऐसे ना बीमार है, तड़प रहा हूँ बीमार। तो उनको लेकर गया डॉक्टर से चेकअप कराया, सुप्रिस्क्रिप्शन लेकर के सारे मेडिसिन दवाई खरीद कर दिया, तो सब परोपकार किए, सब उनको भलाई किए। लेकिन फाइनली कोई यहाँ से आपने से कोई गया था हरिकृष्ण वाले, वो मिल गया, बोला अरे तू है ना। वो उनको ना खाने दिया, ना कपड़ा दिया, ना कोई दवा पानी दिया, उनको परेशानी तभी था। वो बोला चलो भूख लग रहा, भूखी लग रहा, बीमारी भी है, कपड़ा भी चाहिए, तो कुछ नहीं दिया उसको। बोला आ करके सीधा मोबाइल निकाला और फोन लगाया उनको पिताजी ने, बोला हाँ जी ये देखिए बेटा से बात करो, बात करा दी बस, तो आ गए। तो आप जो चारों व्यक्ति उस लड़का का उपकार किए, आपका मतामत से सबसे अच्छा उपकार कौन किया? हाँ चौथा वाला, अरे वो तो एक नया बच्चा का चल किया, ना खाने दिया, ना कपड़ा दिया, ना कुछ नहीं दिया उसको, किसी उपकार किया? ये बात हम मानते हैं ना, क्योंकि एक बार आपने आदमी से मिला देने से सदा के लिए जो जो आवश्यकता सब सही प्रकार से पूरा हो जाएगा। और आप देंगे एक बार, वो तो दिन में 3 बार भूखा होता है, कितने बार खिलाए, कितने बार बीमार पड़ता है, कितने बार कपड़ा जरूरत है, कितना देंगे? नहीं हो सकता। एक बार उनके पिताजी से मिला लो, दैट्स इट, सदा के लिए उनका टेक केयर हो जाएगा। तो ही हम लोग का फॉर्मूला है, यही श्रेय है। बाकी एक बार दे देने से प्रेय है, उसमें क्या होगा, फिर 2 घंटे के बाद फिर भूख लगेगा, फिर कपड़ा बढ़ जाएगा, फिर कपड़ा चाहिए, फिर बीमार। एक बार आपने आदमी से मिला दो, जो इनका है उनका साथ उनको मिला दो, फिर सदा के लिए वो भी ठीक ही काम है। हम जितने भूले भटके दुखी जीव इस संसार में दुख भोग रहे हैं, हमारा दुख असली कारण है हम भूल गए हैं कि हम किसी का है, कौन हमारा है। यही बिना पता से हम मर रहे हैं, इतने दुख भोग रहे हैं। एक बार हमको पता चल जाए कि हमारे डाडी इतने बड़े सर्व समर्थ पुरुष हैं, संसार में कोई ऐसा चीज नहीं जो कर सके, सब जगह में उनका हाथ पहुंच सकता है, मैं उनसे भूल गया हूं, भटक गया हूं, एक बार उनसे फिर मिल जाए सदा के लिए काम हो जाए। तो इसी के लिए जो फोन नंबर, ये फोन नंबर 10 डिजिट का होता है ना आजकल, लेकिन ये 16 डिजिट का है, 16 32 डिजिट ना, 32 नंबर, 16 कितना, 32 डिजिट ना, 32 अक्षर वाला एक फोन नंबर है, लंबा है लेकिन बीजी जाता जरूर लेकिन उठेगा। ऐसा नहीं कि वो फोन बंद है ऐसा मिलेगा, यहाँ का तो फोन दुनिया में करो फोन बंद ही रहता, लेकिन यहाँ बिजी रहेगा लाइन लेकिन एक्टिव है, उठेगा। ये जो ये है वास्तविक श्रेय। तो प्रभुपाद जी ने इस पर्पट में अपील करते हैं, मैं चाहता हूँ क्योंकि यद्यपि ये शरीर, ये धन, ये संपदा, ये सुविधा बहुत टेम्पोरियरी, कुछ समय तक तुम्हारे पास रहेगा, ऐसे ही जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं किसका, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, तुम भी जाओगे वो भी जाएगा। तो इसलिए पूरे शरीर शक्ति सामर्थ्य बाकी कुटुंब जो भी कुछ आपका है सभी के द्वारा जितने संभव हो जीते जी कुछ करके जाओ, श्रेय आसन करो, यही आपके साथ जाएगा, बाकी सब यही से बन जाएगा, हाय हाय करते रह जाएंगे, सब हाथ से चला जाए, केवल दुख ही दुख करते रह जाएंगे, क्या करूँ क्या कुछ नहीं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ संपूर्ण जगत में रोपा देखते हैं, पूरे संसार में आज जो सिचुएशन है, क्या सिचुएशन, न हेडलेस सोसाइटी लोग बात बोलते हैं, आजकल समाज कैसे हैं, हेडलेस, हेडलेस समझते हैं, सर्वहीन समाज, समाज का शरीर नहीं। बोले क्यों, बोलते हैं कि हमारा शरीर में मुख्यतः 4 अंग होता है, मुख्य मुख्य अंग, एक सर, एक हाथ, एक पेट और एक पैर, ये 4 वर्ण के बाद है। 4 वर्ण मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो शूद्र होते हैं नीति पूर्वक उनका क्या काम होता है कि बाकी उच्च तीन वर्ण का काम करे, लेबर क्लास है, सभी के लिए काम करे। जैसे हमारे शरीर में शूद्र है पैर दोनों, पूरे शरीर को उठा करके ढो करके जाता है, बाथरूम में जाओ, ऑफिस में जाओ, मंदिर में जाओ, कहीं जाओ, और कोई अंग काम करते हैं, बेचारे लेबर काम करते हैं, पैर उठा कर जाता है बेचारा, सारे लोड उठा कर भी जाता है, बाकी कोई नहीं उठाता है, थोड़ा देर हाथ में चल पड़ो, थोड़ी देर सर में चलो, नहीं, सारे बेचारा सारे लोड उठाकर हमेशा के लिए कहीं भी जाओ, दौड़ो, जो करो, पैर ही सारे श्रम करता है, पूरे शरीर के लिए काम करो, ये शूद्र का काम करता है। उसके बाद में आता है वैश्य। वैश्य होता है कि सारे वर्ण को सप्लाई देना, खुद भी लेना, सबको देना, व्यापार 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 वाणिज्य करना है, वैश्य का काम बोले पेट करता, पेट सारे लोड लेता है, खाना पीना सब वस्तु लेकर पचा करके सारे अंग को सप्लाई देता है, अगर पेट नहीं लेगा सारे अंग ढीला पड़ जाए, ये व्यापार वाणिज्य करता वैश्य है, पेट वैश्य है। और क्षत्रिय है, उसके ऊपर क्षत्रिय काम है सभी सोसाइटी के प्रत्येक वर्ग को सुरक्षा प्रदान करना, कोई आता है उसको थप्पड़ मारना, उसको बचा के रखना, उसको प्रोटेक्शन देना, बोले हमारा शरीर में ये क्षत्रिय वर्ग के हाथ है, सारे लिखा पढ़ी शासन आयन कानून हार पीट सब वही करता है, सब धमकी देता है, ये क्षत्रिय है। लेकिन बिना काम करने वाले एक वर्ग होते हैं, कुछ भी नहीं करते, केवल खाते पीते बैठते रहते हैं बामास, वो होते हैं ब्राह्मण, वो कुछ करते नहीं, शास्त्र के अनुसार सामाजिक नियम अनुसार ब्राह्मण ना व्यापार करेंगे, ना खेती करेंगे, ना कुछ भी करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, केवल पठन पाठन यजन याजन दान उनका है, पठन पाठन करेंगे, पढ़ेंगे, बाकी कुछ नहीं खाएंगे। अरे काम तो शरीर कैसे चल रहा, भीख मांगे, भीख मांगने के लिए उनका अलाउड है, हाँ दे आर ऑथराइज्ड, भीख मांग कर खाएंगे लेकिन कुछ काम नहीं करेंगे, लेकिन कुछ तो करेंगे ना, हाँ काम करते, कौन सा काम, ना केवल उपदेश देना, बुद्धि प्रदान करना, गाइड करना दूसरे को, बड़े बड़े राजा महाराजा तक ब्राह्मण समाज रखते हैं एडवाइजर बड़ी में, एडवाइजर बड़ी में रखते हैं उपदेशा मंडली ब्राह्मण होते, क्योंकि वो शास्त्र के ज्ञाता होते हैं, शास्त्र के नीति को समझते हैं, वो बताते हैं इसे तो ईसाई करना उचित, तो इसलिए वो रहते हैं, वो बाकी कुछ नहीं करेंगे, वो नीति बताएंगे। तो हमारा शरीर में ये सर जो है सबके ऊपर वाला सीट बैठा, कुछ काम करता है, कुछ नहीं करता लेकिन सबको गाइड करता है, वो है सर, बाकी कुछ नहीं करता। बोले ठीक है, ये चारों अंग शरीर का चारों ही बड़े महत्वपूर्ण है, पूर्ण शरीर तभी होगा जब हाथ पैर पेट सर सब होगा, तब पूर्णांग शरीर ना हो तो है मानता हूं, लेकिन फिर भी आपने अपने महत्व सबका है, सर के जैसा महत्व किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि ब्राह्मण है, ब्राह्मण ब्राह्मण कौन पूछते ना, कुछ पूछते नहीं। अब देखिए बोलते आपके शरीर का अगर पैर कट जाए, एक या दोनों पैर भी कट जाए, आजकल तो प्लास्टिक और लकड़ी के पैर के लगाकर काम चला लेते, नहीं तो हुल चेयर में बैठकर काम की जाए, है ना, चलेगा काम, से कोई दिक्कत नहीं हो। अगर हाथ पेट में स्टोमाक में गड़बड़ हो जाता, प्लास्टिक स्टोमाक डाल देते, वो ऑपरेशन करके ठीक करते चल जाता, हाथ भी दोनों नहीं रहे, एक रहे कुछ भी रहे, वो भी हट जाते हैं एडजस्टमेंट, प्लास्टिक के हाथ लगा देंगे, लकड़ी के हाथ लगा देंगे, कुछ कर देंगे, काम चल जाएगा। इसी प्रकार अगर सर चला जाए, कट जाए, तो प्लास्टिक का लकड़ी का सर लगा काम चला सकते हैं, हो सकता है, संभव है नहीं। सारे अंग भले चला जाए फिर मेंटेन हो सकता, लेकिन ये अंग जो कुछ नहीं करता है, बैठा रहता है, वो इतने महत्वपूर्ण है, वो चला जाएगा तो उसका अल्टरनेटिव है ही नहीं, हो गया तो सो गया, कोई प्रयोग बनेंगे तो। इतने महत्वपूर्ण है ब्राह्मण का होना, समाज में कितनी आवश्यकता है, क्योंकि सारे समाज को बुद्धि प्रदान करता है, नीति प्रदान करता है, दिग्दर्शन करता है। तो आज समाज में कोई सर वाले लोग है ही नहीं, सारे कंपटीशन करके शूद्र बनते हैं जबरदस्ती, सब नौकरी के पीछे भागते हैं, ये सब शूद्र वर्ग का काम, बोले पूरे समाज हेडलेस सोसाइटी, सर है ही नहीं, और बिना सर में अगर शरीर रहेगा तो कैसे होगा। हाँ हम बैठे होंगे, हमारा सर नहीं है, बाकी सर ठीक ठाक है, तो कौन देखेगा, कैसे समझेगा उसको, है ना। तो इसी प्रकार तो ये समाज की जो विकट स्थिति है, इसमें कुछ सर होना बहुत आवश्यकता है। प्रभुपाद जी को पूछा गया, इतने सारे धार्मिक संस्थाएं हैं, आप ये सोसाइटी फिर क्यों किए। पहले मैं जानता हूँ बहुत सारे सोसाइटी है, भी किसी में जानता था, लेकिन ये सोसाइटी किया इसका केवल एक ही उद्देश्य में किया, आई वॉन्ट टू क्रिएट सम ब्राह्मण इन सोसाइटी, मैं समाज में कुछ ब्राह्मण वर्णों को तैयार करना चाहता हूँ, ब्राह्मण का भाव है ये सर है। तो इसलिए प्रभुपाद जी श्लोक के परपट में लिखते हैं, मैं सारे जनता को अपील करता हूँ, आजकल जगत में सारे है माइनस कृष्ण, कृष्ण की भगवत ईश्वर विहीन समाज, ईश्वर विहीन चेतना, तो हम लोग को यही अभी बहुत बड़ी जरूरी है, ईश्वर को समाज में लाना, भगवत जागृति भगवत चेतना प्रदान करना समाज में बहुत बड़ी भारी आवश्यकता है। इसके लिए मैं अकेला क्या करूं, जितने बुद्धिमान ज्ञानवान सब आए इस काम से आत्मबलि दे, इस परोपकार में जी लगे तो समाज का वास्तविक श्रेय वास्तविक कल्याण होगा, ये चाहते हैं। और इसी के लिए सोसाइटी बनाए, ये सोसाइटी में प्रभुपाद जी का एकमात्र यही लक्ष्य है कि जितने ये सोसाइटी में जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं सभी को कम से कम अपने आप को ब्राह्मण के स्तर तक लाए और समाज में ईश्वर चेतना को फैलाने के लिए अपने काम करे, भगवत चेतना को जागृत करे, इस प्रकार के चाहते हैं। इसी श्लोक में अनुवाद इतनी बड़ी बात होती है। तो इस प्रकार अधिचि ऋषि ने बहुत लंबे जोड़े उनको उपदेश दिए, बोले ऐसी कोई बात नहीं, जब ये शरीर ऐसे ही मरेगा मिट जाएगा ऐसे बिगड़ जाएगा, इतने बड़े सुजोग मुझे मिला है संपूर्ण देवताओं के कल्याण में कैसे छोड़ सकता हूँ, आप चिंता मत करो, आप देखो मैं अपने सामने ही अभी शरीर छोड़ता हूँ। हरे देवता लोग खुशी होकर चारों तरफ बैठ गए, अधिचि जी तुरंत अपने ध्यानस्थ हो गए, तुरंत समाधि योग में चले गए, ध्यान करके ऐसे शरीर छोड़ दिए देवताओं सब चश्मा लगाकर देख रहे थे, पता ही नहीं चला कब मर गए, कोई टूटा चूचा कुछ आवाज ही नहीं हुआ, हम तो मरे कितने रोए धोए चिल्लाए बिना मरे ऐसे कर, कुछ नहीं हुआ इतने आसान से, क्यों दो श्लोक में सुखदेव को सब कहते हैं इतने तीव्रता से इतने तन्मयता से खुशी खुशी से भगवान ने अपने मन को लगाए, तो भगवत चरण में चरणारविंद में मन को लगा कर समाज में चले गए तो बिल्कुल उनका आत्मा से शरीर अलग हो गया, पता ना चला, पता नहीं चला कैसे पता चलेगा, आत्मा तो पूर्ण आश्रय स्थल गया, इधर उधर भटकने से दुख होता, तो भटका नहीं अपने घर में गया, अपने घर में जाएगा चिल्लाएगा रोएगा, रोने धोने वाले व्यक्ति अपने घर में जाने से शांत हो जाता है, तो हम लोग अपने घर में नहीं जाते इसलिए रोते चिल्लाते, सचमुच परमानेंट घर केवल भगवत पद है, वहां जाने से शांति में चैन से रहते हैं, बाकी जितने हम बोलते हैं कि मेरे घर है, जरा आपका घर होता छोड़ना क्यों पड़ता है, ये समाज में जितने आप घर बनाए परमानेंट कोई है कोई नहीं, ये शरीर परमानेंट तो वही क्या, सारे रेंटेड है, अपना घर है ही नहीं, अपना घर होता तो छोड़ना थोड़ी पड़ता, कोई अपना घर नहीं है, अपना घर केवल श्री भगवत चरण है, वही हमारे अंश हैं, हम उन्हीं के अंश है, यहाँ जाएंगे चैन से बैठेंगे, अभी तक भटक रहे अपना घर नहीं का, इसलिए दुख। तो इस प्रकार से अधिचि मुनि अपने पद को प्राप्त किए, शाश्वत पद को देवताओं को उनको पता नहीं चला, वो खुश हो गए कि बुढ़ा गया, अब चमड़ी उतार कर घर निकालो, और चेक किए हाँ गया सांस नहीं चलता, फटाफट अब निकाल निकाल करके हड्डी लेकर के इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए सब मिल करके तुरंत और लेद मशीन में गए, उनका उनका फैक्ट्री है किसका, विश्वकर्मा जी, विश्वकर्मा जी तो इंजीनियर है, उनका सारे मशीनरी है, तो वहाँ लेकर गए भगवान के फोन के वो डिजाइन दिए होंगे किस डिजाइन में बनेगा, तो हड्डी में लेकर के भगवान ने 100 आरी वाला एक वज्र बनाने के लिए डिजाइन बताए थे, तो विश्वकर्मा ने बिल्कुल डिटो डिजाइन बनाकर दिया, तो फिर भगवान ने आपने मशीन आपने तेज उसमें फीड किए, भगवान आपने शक्ति शक्ति उसमें निहित किए, तो शक्ति निहित होने के बाद में वो वज्र बन गया महाशक्तिशाली अमोघ अस्त्र, अब भी बाजार में नया प्रोडक्ट निकला लेकिन ओनली वन सेकंड हैरी, एक ही प्रोडक्ट से एक ही प्रोडक्ट हुआ, अरे दो दधीचि तो है नहीं, एक ही दधीचि थे और उन्हीं के एक ही स्केलेटन बड़ी निकला, उसमें विश्वकर्मा ने डिजाइन बन बनाया, ब्रह्मा जी ने भगवान ने उसने अपने बेटे रिपीट किए शक्ति जो हुआ, तो उसी को वज्र बन जाने के बाद में भगवान शक्ति से सम्मानित हो जाने के बाद में आप इंद्र जब वज्र को धारण किया उनपे लिखा था लिखा होगा सरे ये सोफा फूल तीस दाट सब लिखा होगा, अगर तो मेडिसिन लेंगे तो लिखा होगा उसे पर्ची तो वज्र को लेकर के इंद्र पर ज्यादा पढ़ने के लिए टाइम नहीं था, समझ सुननी पड़ा, लेकिन ले लिया। तो जितने देव समाज सिद्ध चारण गंधर्व किन्नर सब थे, विद्याधर उरग वसु नाग बन्नी सब इतने खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। अब इंद्र हाथी में बैठ करके आपने गाड़ी, सबसे बड़ा गाड़ी उनका है ऐरावत हस्ती, उसमें चढ़ करके मुकुट बांध करके आप कवच बांध करके इतने भरोसा में बैठ कर का जी भगवान के शक्ति से सुरक्षित है, ऐसे पावर लेकर के चला जैसे साक्षात काल को भी आज सामना करेगा, डर जाएगा काल के सामने। ऐसे जोश में गए सारे देवताओं में, वसु साध्य सिद्धगण सब उनके साथ में, करोड़ों देवताओं देव समाज साथ में मिल करके जहाँ असुरों के मोर्चा खड़ा था, ललकार करके गए उनके साथ युद्ध करने के लिए। तो वहाँ पे तो पहले से वृतासुर ने आपने मोर्चा लेकर डट कर खड़ा, इसमें अनेक बलि बलि नमुची संबर पुलोमा ऐसे अनेक बड़े बड़े महा असुर सेनापति को लेकर के विशाल असुर सेनाओं के जब उसमें राक्षस आदि प्रमथ आदि बहुत थे, उनको लेकर के वो खड़ा था डट करके। तो कहते हैं कि इसी भव्यसुत मनु सप्तम मनु के भव्यसुत मनु के प्रथम मनमंत्र फास्ट मिलेनियम एक मनु 71 चतुर्युग तक शासन करते हैं। जब प्रथम चतुर्युग बीत रहा था उसी समय का घटना है इसी भव्यसुत मनु का। वर्तमान कौन सा चतुर्युग घट रहा है? करेक्ट, अभी 28वां चल रहा है, मतलब 27वां चतुर्युग का पहले का जो फर्स्ट चतुर्युग था इसी मनमंत्र का। उस चतुर्युग में चार युग होता है, सत्य युग अभी अभी बीता था, त्रेता युग के शुरुआत के बाद था। सुंदर जी कहते हैं बिल्कुल डिटेल बोलते, इसी सप्तम भव्यसुत मनु के प्रथम चतुर्युग के प्रथम सत्य युग बीत करके त्रेता अभी आया था। त्रेता का शुरुआत में नर्मदा नदी के तट में ये भयानक देवासुर संग्राम हुआ। एक तरफ से बड़े बड़े असुर सेनापतियों के साथ वृतासुर खड़े थे और दूसरे तरफ से भगवान की शक्ति से समन्वित होकर के इंद्र करोड़ों देव समाज के साथ अरे अस्त्र शस्त्र वज्र धारण करके उनके सामने आए। नर्मदा तट में घमासान युद्ध हुआ, एक दूसरे को ललकार करके आए। जैसे सामना सामने हो तो प्रेरकार करके आए, एक दूसरे को पहले बचनिका होता है, गाली देते हैं खुद दूसरे को गाली दे। असुर लोग सामने बोले छोड़ेंगे नहीं, अभी मारेंगे। असुर लोग सबसे अटक पहले की बदमाश होते हैं और शुरू किए मार उसे। ऐसे ऐसे अस्त्र चलाए, विभिन्न प्रकार के अस्त्र के कई नाम दिया गया, शतघ्नि भुसुंडी वृक्षा मुद्गर गदा, कई प्रकार के सैकड़ों प्रकार के अस्त्र होता है। कई कई अस्त्र का अर्थ लिखते हैं, जैसे शतघ्नि है बोलते हैं, शतघ्नि एक प्रकार का अस्त्र था और चार हाथ परिमाण के चतुर्हस्त परिमाण का 100 कांटे युक्त है और उसमें एक बार चलाए तो 100 आदमी मर जाएंगे, इसलिए उनका नाम शतघ्नि है। 100 आदमी को मार डालेगा एक चाल में। ऐसे ऐसे भुसुंडी होता है, ऐसे कई प्रकार के सब ये अस्त्र आजकल को जानते नहीं देखे भी नहीं, ऐसे से उनका पास सब ऐसे जैसे अस्त्र होता था। ये अस्त्र सब चलाए, सारे अस्त्र चित्कार करके चलाए, इतने अस्त्र एक के बाद एक चलाए, एक के बाद एक अस्त्र चलाए कि बिल्कुल देव सैनिक दिखाई नहीं पड़े, ढक गया आकाश, कोई दिखाई ना पड़े, इतने प्रचुर परिमाण में अस्त्र चलाए। लेकिन कहते हैं तो क्या हुआ उसका रिजल्ट, रिजल्ट क्या हुआ? देवता लोग तो इतने टेम्पर में थे कि ये सारे अस्त्र शस्त्र उनके पास पहुंचा ही नहीं, अभी आकाश में था, सब टुकड़ा टुकड़ा कर काट कर उड़ा दिया। इतने हस्त कोषण था पृथ्वी में अस्त्र चलाए, वो आकाश में खंड खंड कर दिए उसको, उनके पास गए नहीं अस्त्र। और उनका पास जितने अस्त्र स्टॉक था सारे फेंक दिए और सारे कंडम वो कट काट कर उड़ गया, तो उनके पास कुछ हुआ ही नहीं। जब बाद में देखे अरे उनको अस्त्र तो टच ही नहीं किया, हम खाली हो गए, उनके पास कुछ हुआ ही नहीं, खरोच भी नहीं पड़ा, अरे डर गए क्या करें, हमारे पास वही गोली बारू कुछ नहीं। अब असुर तो थे ही, उखाड़े पेड़ पेड़ उखाड़े, पर्वत शिखर पत्थर उखाड़े मारे, उनको गई उठा तो पत्थर पेड़ उखाड़ करके पीटे, खूब फेंके उनके ऊपर, लेकिन जो बड़े बड़े आधुनिक अस्त्र को काट गिरा वो उनका सामने क्या करे, वो अस्त्र मार कर उसको भी खंड खंड चूर चूर कर डाले, उसमें कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। आस पास में जितने पेड़ था, जितने पहाड़ था, सब तोड़ ताड़ कर गोली जो लाइक खत्म कर दिए, वो भी कुछ काम नहीं किया। आप असुर सुना बड़े हो तो छाप हो गए, लगता है कुछ काम नहीं कर रहा है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इन असुरों के सारे प्रमत्त, उनके प्रभाव, उनका अस्त्र तेज जोर सब निकाम हो गया। जैसा कोई वहाँ कृपण व्यक्ति के पास कोई जाचना करे जा करके, उनके सारे जाचना, सारे खुशामत, सारे स्तुति बेकार जाए, कुछ नहीं मिलने वाला है। ये महा नंबर वन कंजू से कुछ नहीं करेगा, आपका टाइम एंड एनर्जी वेस्ट हुआ। बोले ऐसे ही हुआ उनका। क्यों? क्योंकि ये भगवान विष्णु से सुरक्षित थे। भगवान के द्वारा जो सुरक्षित होते हैं उनके सामने बोले असुरों के पास सारे था, बल था, ओज था, तेज था, प्रिय था, अस्त्र शस्त्र सब था, लेकिन माइनस भगवान की कृपा, केवल भगवत अनुग्रह नहीं था, बाकी सब था, पर उनके पास भी था प्लस भगवत अनुग्रह था, बस इतना डिफरेंस था। यही डिफरेंस के कारण भगवत अनुग्रह के बिना सारे बल, विद्या, ओज, शस्त्र, तेज कुछ काम नहीं किया, बेकार हो गया, और केवल भगवत अनुग्रह के कारण वो सुरक्षित रह गए, कुछ फर्क नहीं पड़ा, और बिल्कुल हतोत्साह हो गए। देखिए सारे गोला बारूद, सारे अस्त्र शस्त्र खत्म, जितने पेड़ पौधा पत्थर सब मारे, ये भी सब खत्म। अब तो कुछ नहीं हो रहा है उनका, आज तो लगता है हम मार जाएंगे, खा जाएंगे, डर के मारे सारे बड़े बड़े असुर सेनापति अपने सैनिक जो भी रथ में बैठे थे, जो घोड़े हाथी में बैठे थे, जो पदातिक मोर्चे थे, सब भागे चिल्ला कर, अरे भागो मर जाएंगे, आज तो टिक नहीं सकते, आज तो मार डालेंगे, भागे सारे असुर। तो जैसे बड़े बड़े असुर अपने मोर्चा लेकर के पीछे भागे, तब वृतासुर अभी डंट कर खड़े थे, वो देख रहे थे लड़ाई हो रहा है, वो अपने अभी तक अटैक शुरू नहीं किए, ये खड़े थे, उनका विशाल शरीर था, खड़े पर देख रहे थे किसे लड़ने से। जैसे देखे कि उनके मोर्चा तितर बितर होकर के पीठ दिखाकर भाग रहे हैं डर के मारे, तो घूम करके देखे, देख कर चिल्लाए, बोले अरे संबर नमुची विप्रचित्ति पुलमा, अरे कायरो कहीं के क्यों भाग रहे हैं? बोले आप लोग अपने माता पिता के पुत्र नहीं मूत्र है, अरे तुम वीर होकर पीठ देकर भागता है, अरे दो ही तो जीवन के गति होता है जब युद्ध करने के लिए आया, एक तो वीर गति, शत्रु के सामने पीठ बिना दिखाए सामना सामने युद्ध करो, मरो, वीर गति की स्वर्ग प्राप्त होगा, नहीं तो दूसरे एक असली मृत्यु होता है। अगर भगवान की भक्ति करके मरते समय में भगवत स्मरण करके, भगवत चिंतन करके, भगवत नाम जप करके, भगवत सानिध्य में अगर मरो, तो ये एक महा अति उत्कृष्ट मृत्यु माना जाता है। उसके साथ साथ दूसरा एक अति उत्कृष्ट मृत्यु है वीर गति का, ये दोनों ही नहीं होगा, पीठ लेकर भाग रहे आपके जीवन बेकार है, क्यों जा रहे हैं इसे कायर कहेंगे, लेकिन कितने भी गाली दो मरने वाले आदमी को गाली भरी कुछ काम नहीं करता, वो तो महाभिषण हो गया, वो तो भागे जान लेकर, लेकिन ये दौड़ रहे हैं पीठ दिखा करके, देवताओं उनके पीछे दौड़ दौड़ कर मार रहे हैं उनको। तो वृतासुर ने पहले तो गाली दी अपने असुरों को, बहुत डांटे कायर कह करके, लेकिन देखे वो सुनते नहीं, भाग रहे, और देखे कि इधर देवताओं ने जो भागे सर भाग रहे उनके पीछे पीछे उनको मार रहे, तो देवताओं को गाली देना शुरू किया, बोले अरे आप भी इतने कायर हैं, आपने तो वीर योद्धा समझ रहे हैं, इतने हीन बुद्धि हैं जो पीठ देख करके भागने वाले के पीछे बाण प्रयोग करता है, ये तो सबसे निंदनीय है, इतना ज्ञान है आपका, अरे ये तो मर गए कायर कहीं के पीठ देखा कर भाग रहे, उनको मारने से क्या जस मिलेगा आपको, ना स्वर्ग मिलेगा ना जस मिलेगा, केवल निंदा होंगे, ये कोई युद्ध रीति है? ऐसे गाली दिए उनको, वो सब देवता लोग खड़े हो गए, गाली दे रहे हम तो, अरे बोले ने हम हाँ हमारे साथ इतने झगड़ा किए, गाली दे तो झगड़ा किए, तो भाग रहे हैं, भागने वाले को पीछे क्यों मार रहा है, अपने को योद्धा समझ रहा है? अगर युद्ध का बारे में उनका युद्ध करने का कुछ इच्छा है, विषय भोग का इच्छा बन खत्म हो गया, मरना चाहते हैं, तो मेरा सामने डट कर थोड़ा खड़ा हो जाओ, एक एक सेकंड मेरा सामने खड़े होकर दिखाओ, मैं सबको समुदाय चैलेंज करता हूँ, जितने करोड़ों देवता है उनको पीछे क्यों भाग रहे हैं बेचारे, डर के मारे मर रहे हैं, भाग रहे हैं, कायरो, उनके पीछे भागने से क्या है, अगर माइक लाल हो तो मेरे सामने आ जाओ, आपका जितने युद्ध कौशल है, जो भी शत्रु जंत्र पाती है सारे लेकर आ जा, थोड़ा एक सेकंड डट जाओ मेरे सामने, मैं देखता हूं आप योद्धा है तो फिर देखता हूं, आओ मेरे सामने। अरे इससे कूट वाक्य कहे तो देवताओं को तो कान में इस गुस्सा उनके गर्म खून हो गया, इतना गाली देता है, सब कसकर के समय मिलकर मारेंगे, सब इमिटेड हो गए मारेंगे। आप जब देखे कि वो सब सच से वृद्धाशु का मारने के तैयार है, वृद्धाशु लगा अब कुछ मुझे लगा कुछ लड़ूंगा, कुछ लगे ये थर्ड क्लास है क्या, इधर उधर वृद्धाशु तब क्या किए, बोलते हैं कि लड़ने के लिए आपने विशाल शरीर को प्रदर्शन कराए, शरीर प्रदर्शन का मतलब यही होता है, आप लोग सब देखो ना मतलब कुश्ती लड़ाई जो होता है, लड़ाई से पहले शरीर प्रदर्शन मतलब कपड़ा शार्ट खोल दे, आओ आओ देखते हैं, कपड़ा उतर देते मित्रों, कपड़ा खोल कर कमर में कस देते हैं, आओ फिर यहाँ से तार ठोकते हैं, यहाँ ताल बाहू में और जांघ में तार ठोकते हैं, उसको शरीर प्रदर्शन, ऐसे ही ताल ठोके वृद्धाश्रम, बोले आ जाओ देखता हूँ बेटा तुम कैसे लड़ने वाले, आ जाओ ऐसे ही अपने शरीर, ऐसे तो कुर्ता पुर्ता नहीं पहने, जो भी दुपट्टा डाले होंगे उसे उतार करके ताल ठोकने लगे, अपने जांघ में और बाहू में ताल ठोकने लगे, वो इतने शब्द हुआ वो कई लोगों का सेंसलेस हो गया, सेंसलेस हो गया, ताल ठोक सुन करके उनके शरीर लग रहा था कि भूकंप होने लगा, इतने विशाल शरीर था, उनको देख कर क्यों इतने बड़े हिलाए, अपने बाहु पीटने लगे, सब मूर्छित होकर गिर पड़े, मूर्छित होकर गिर पड़े, दोबारा सेकंड उठे तो सांस लेकर के फिर थोड़ा 10-15 मिनट नीचे उठे लेकर फिर झाड़ झूठ कर पानी भर छाट कर खड़े हुए इतने बड़ा महावीरों कैसे लड़ेंगे उनके साथ। तब वृद्धाश्रु तो अभी तैयार होता लड़ने के लिए, अभी हाथ पर पीट करके एक गर्जना किया, लड़ने से पहले एक आवाज कर ऐसे सिंह नाद किया, बोले इंद्र भी ऐसे हो गए वज्र के साथ में, ऐरावत भी सिकुड़ गए, और इंद्र के अलावा बाकी सारे लगभग समस्त देवता संतुष्ट मूर्छित होकर गिर पड़े, आपने अपने वाहन से गिर पड़े, ऐसा हाल हो गया। तो उन्होंने देखे कि अब क्या करे, वो तो गर्जना करने से ऐसे मर जाते, लड़ूंगा क्या, लेकिन थोड़ी देर खड़े रहे, फिर उसे उठे लड़ाई के मैदान में, उठ करके फिर बोले हम छोड़ेंगे नहीं, मारेंगे वो करेंगे, लेकिन वो वृद्धाश्रु बोला अच्छा ठीक है तैयार हो जाओ आप सभी, मैं अकेला, अब आखिरी सब गए, मैं अकेला लड़ूंगा, अकेला लड़ूंगा करके विचार करके त्रिशूल उठाया, आपने महाशूल को हाथ में ले करके पैर उठाया चलने के लिए, जैसे गर्जना करके शूल उठाकर चला, अरे जिसको देख करके ताल ठोक करके गर्जना मूर्छित हो गई, अब आ रहा है, अब बेचारा को दो दो बार सेंसलेस हो गए, अब सेंसलेस नहीं हो रहे थे, आंख बंद कर दिए, बोले नहीं देखेंगे उसको, मरने से पहले कभी देखेंगे नहीं, इतने खतरनाक, बाप रे बाप, ओहो बंद, सब चक्षु उन्मीलन, सब बंद कर दिए निमीलन, आंख बंद कर दिए सारे, बोले देख नहीं सकते इतने खतरनाक है, यही से मुख बदान कर आता है, आंख बंद कर दिए तो वो तो जा रहा है तो गिर पड़े सब आंख बंद करके, लेकिन उन्होंने तो स्टेप ले लिए थे वृद्धाश्रु ने, तो बोले अस्त्र में क्या मारूं, ऐसे ही चलने लगे, पैर में रौंधते गए, हजारों हजारों देव सैन्य अपने पैर के चक्का के नीचे चटनी हो गए, अरे उनके पैर तो कई हजार टन हेवी वेट तो गाड़ी के चक्का की तरह होगा, पैर ऐसे इतने बड़े महा शरीरधारी है, पैर में रौंधते गए, और सारे देवता कोई छू छा के का भी शांत करने के लिए अवकाश नहीं मिला, मरते गए सारे, आंख बंद तो किए थे और ऐसे पैर के नीचे गए तो एक बार से एक सेकंड में मर जाते, अब शब्द निकालने के टाइम नहीं होता, इंद्र देखा तो बोला तो आज ही मार देगा सब, अब वनडे मैच खत्म हो जाएगा, फिर क्या हो बचेगा क्या हो, बोले हम इतने भगवान से प्रार्थना किए, इतने किए वज्र बनाए लेकर आया, लेकिन अब मार रहा है सब, इंद्र महाक्रोधित हो गए, बाकी जो दूर दूर से जो भाग कर गए थे बोलते थे इंद्र क्यों नहीं मारो, मारो 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 उसको, आज ही नहीं तो मार डालेगा सबको, मारो, इतने उत्साहित किए, तो इंद्र ने पूरी ताकत लगा करके वज्र की ओर देखा, उनको देखा, गुस्सा बहुत आया, गुस्सा में आकर के मारने के लिए तैयार होकर लेकिन वज्र नहीं चलाया, वज्र नहीं मारा। आपने जो अमोघ अस्त्र गदा था, जिस गदा में कई कई असुरों को उन्होंने मार गिराया, जीता है, अनेक युद्ध से जीता है, इस गदा के प्रहार के कारण असह्य वेदना जिस गदा को देता है, दानव अस्त्र कोई उसको रोक नहीं सकता, इस अमोघ अस्त्र इंद्र की गदा था, इस गदा को घुमा करके पूरे शक्ति के साथ मारा, पूरे शक्ति के साथ। अभी तक ये गदा के मार से बड़े बड़े असुर मर चुके, कभी परियोर नहीं हुआ था, ऐसे सियोर शक्त अपने जो बड़े प्रभावशाली गदा को इंद्र ने पूर्ण शक्ति लगाकर प्रयोग किया और उनको मारा उल्टा सीधा, और बड़े त्याग से देख रहा था, और बाकी लोग जो देवता से छिप कर देख रहे थे, बोले तो मजा, इंद्र आपने बड़े वेगशाली महागदा प्रयोग किए हैं, अब तो कुछ होगा, आप गदा घूम करके बड़े तेज से वेग से आ रहा था उल्टासुर के पास, उल्टासुर देखा ये गदा आ रहा है, थोड़ा खड़ा हुआ, बाएं हाथ में इसे पकड़ लिया, गदा उनके पास आने से पहले उसे पकड़ लिया, जैसे कोई बॉल कैच करते ना क्रिकेट, ऐसे कैच पकड़ा, तो गदा वापस गया जाकर इंद्र के गाड़ी में लगा, इंद्र का गाड़ी कौन था, ऐरावत, तो गाड़ी में लगा, गाड़ी 28 हाथ पीछे चला गया, क्या कर फ्रंट गियर में चल रहा, गियर फेल हो गया, फ्रंट गियर में गाड़ी होकर भी बैक गियर में 28 हाथ चला गया, जाकर चिथाड़ करके चक्कर साथ लगा कर गिर पड़ा, पैर फट गया, रक्त फवारा तरह निकला, इंद्र को लेकर के गाड़ी के साथ यात्री और गाड़ी एक साथ में गिरे, इंद्र वज्र लेकर के बैठा था गाड़ी में, वो गाड़ी पीछे बैक गियर में इतने पीछे जोर से गया, घूम घूम कर चित्रा कर गिर पड़ा, इंद्र के समेत गिरा, इंद्र को थोड़ा बुरा लगा, इंद्र सबके सामने में इसे गिर गया, उठ करे अपने पैर पर झाड़ा, थोड़ा साठ पर ठीक ठाक किया, देखो फटोफटो पीछे नहीं ना होगा, नहीं किसी से लगता नहीं, चलो बेटे उठा, लेकिन डर रहा अब हाथी गाड़ी इंजर्ड हो गया, पता नहीं इंजिन सीज हो गया कि क्या हो गया, अब पता नहीं इसी अवसर में मुझे फिर ना दूसरा माल मारे खत्म कर दो, इसलिए डर के मारे इष्ट श्रवण कर रहा, लेकिन पिता सुनो देखे इंद्र बेचारा डर गया है, अपने गाड़ी इंजर्ड है, बस स्वयं इस प्रकार पड़े हुए उठा उठ करके इस हाथ पर झाड़ झूड़ कर रहा है, वो खड़े रहे चुपचाप, बोले बोले मैं मारूंगा नहीं, ठीक हो रेडी हो जा, तो इंद्र ने उनको टाइम मिला तो जो उनके अमृत हस्त था, अपने हाथ में हमेशा अमृत रखते हैं, तो अमृत हस्त को लेकर के इंद्र का जो ऐरावत का सर फट गया था वहाँ लगा, वही उनका फर्स्ट एड है, फर्स्ट एड मतलब जल्दी से ठीक करना, अभी तो पट्टी मट्टी लगते हैं जल्दी नहीं होता, 8-10 दिन लगता है, लेकिन रियल फास्ट एड है अमृत हाथ लगाना, तो अमृत हाथ फास्ट एड हमेशा अपने गाड़ी में लेकर चलता था इंद्र अपने हाथ, तो जैसे ऐरावत का ऐसे हालत था अपने फास्ट एड बॉक्स से लगा अमृत हस्त भी लगा दिया, अमृत स्पर्श पाते ही तुरंत ब्लड ब्लीडिंग बंद हो गया और हाथी ठीक हो गया, गाड़ी ठीक हो गया, तो हाथी उठने लगा, तुरंत फास्ट एड होकर फास्ट रिलीफ हो गया, रिलीफ हुआ, उठ कर जैसे खड़ा हो गया, इंद्र ने फिर गाड़ी बैठ गया, बैठ करके देखा कि वृत्तासुर पास में है कुछ कर नहीं रहे, तो फिर आके सामने खड़ा हो गया, खड़े हो गया डंट करके, लेकिन लड़ नहीं रहा है, खड़े तो हुआ इतने साहस करके आया, लेकिन अब मारूंगा नहीं मारूंगा, वज्र चलाऊंगा क्या करूंगा, कुछ नहीं कर रहा है, खड़े हैं सामने, सामने खड़े हैं, बहुत विचारग्रस्त है। तब इसी अवस्था में वृत्तासुर चिल्लाने लगे, बोले अरे इंद्र मार, क्यों नहीं मार रहा है, तू वज्र लेकर चला वज्र, इंद्र कुछ नहीं कर रहा, खूब गाली दिया नहीं सुना, नहीं मार। अब विचार मन में उठ रहा है, जब इंद्र को पता था भाई भगवान ने स्वयं उनको फॉर्मूला बताए, ये वृत्र किसी से नहीं मर सकता, केवल इस वज्र से मरेगा, ये डिजाइन मेरे शक्ति अधिचिका अस्ति, सारे पोटेंशियल लगा कर मरा, सब आपको पता है, तो वो अपने साथ में लेकर खड़ा था, उसको क्यों नहीं चलाया? उसको क्यों नहीं चलाया? तो एक चिंता मन विचार मन में आता है कि इसलिए नहीं चलाया क्योंकि अभी नया प्रोडक्ट है, एक्सपेरिमेंट तो हुआ ही नहीं। अभी अभी इतने बड़े महाशत्रु सामने है, जिस चीज को अभी अपने मैनुअल में पढ़े नहीं कैसे यूज करना, अभी अभी प्रोडक्शन हुआ नया, अब फास्ट होने के पास ही आया, एक ही प्रोडक्ट है केवल, अब अल्टरनेटिव है नहीं उसका, उसको अभी टेस्टेड नहीं किया कि काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कैसे करे कैसे पकड़े कुछ पता नहीं उनको, बिल्कुल न्यू ब्रांड हाथ में लिए हैं, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए बिना एक्सपेरिमेंट में तो इसलिए उनको डर रहे थे। जो ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटेड है, कई बार उसको चलाए, चलाने का कायदा पता है, उनके परिणाम पता है, उसमें जीते हैं, पहले उसको चलाते हैं, सेकंड बार उसको तो पड़ पाड़ कर उसको काम नहीं मेरे साथ, इसीलिए उसको पहले न चला करके गदा चला दिया। गदा चला दिए तो आपको मालूम है क्या हुआ, उल्टा पलट हुआ, गदा को तो उनके लगा नहीं, उल्टी गाड़ी इंजन सीज हो गया था, जैसे फास्टर्ड बॉक्स था करके बच गए, एक बार यात्री के साथ गाड़ी इंजन होकर पीछे में आकर गिर के पड़ा। तो अभी सोच रहे थे उन्होंने, तो अभी ये गदा तो मैं चला हूँ, एक बार चला कर देखा मेरे ऊपर मारा, अगर मैं कोई अस्त्र मारू ये वज्र फज्र मुझे काम करेगा नहीं करेगा पता नहीं, उल्टी मरे हो रहा आएगा वो तो नहीं मरेगा, मैं तो निश्चित ही मरूंगा। बोला जी शस्त्र से इतने महाबली ऐरावत का ये हाल कर दिया, अगर मेरे में लगता तो क्या होता, मेरा तो टुकड़ा टुकड़ा हो जाता, और गदा में मेरा हाल ये कर देता, बाएं हाथ से लिखा, अगर वो दाएं हाथ से मारा तो, अगर ये वज्र पकड़ा तो इसलिए बिल्कुल वो चुप खड़े हुए कुछ नहीं करूंगा, पता नहीं मारने से वो मेरे ऊपर आता है, मैं उनको मारता हूँ उल्टी मेरे ऊपर आता है, और क्या मारूं, जो इतने मेरे प्रिय गदा था, कितने बार मैं उसको चलाया हूँ, कितने बार कईयों को मारा हूँ, वही उल्टी ऊपर मेरे मेरे गाड़ी इंजर्ड कर दिया, मैं भी इंजर्ड हो गया। अब जो अस्त्र को मैं कभी चलाया नहीं, कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उसको चलाऊँ क्या ना होगा, इस ऐसे बड़े सोचने में पढ़ करके इंद्र देवता बिल्कुल ऐसे विचार करके बैठे थे, तो क्या करूं, लड़ाई ना लड़ाई करूं ना लड़ूं, तो सारे जो देवता थे जब इंद्र ने गदा चलाया था सब बहुत मैंने ताली मारते ना क्या बोलते हैं उसको, अरे कोई जैसे चौका मारे किसी करते हैं क्या करते हैं, बहुत उनको उत्साहित किया, यस 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 वेरी गुड, हाँ डन वेल डन वेल डन, लेकिन वेल्डन कर रहे थे उनका पास गया लगा तो नहीं कुछ, उल्टी वापस आया गाड़ी सहित इंद्र को बैक वर्ड दबाया, सारे पीछे हो गए, बाप रे बाप, जो देखे होंगे टीवी में वो भी, और जो साइड में थे वो भी, और जो जो तो प्रैक्टिकल देख रहे थे वो तो बोले माय गॉड खत्म, क्या लड़े उनके साथ ना देवराज का ये हाल, वज्र हाथ में लिए लिए गाड़ी के ऊपर बैठे बैठे बैक में पड़े किसी, तब सब हताश हो गए चुपचाप, कोई कुछ नहीं बोल रहे, किसी का मन मुख में कोई शब्द उच्चारण नहीं हो रहा है, कोई उत्साहित नहीं हो रहे, ऐसे अधमरे पड़े हैं, क्या लड़ेंगे, बोलेंगे सारे इतने प्रार्थना किए, इतने काम किए, इंद्र दधीचि के पास लगा कर इतने काम किए, सब कुछ करके आए लेकिन कुछ नहीं काम कर रहे, ये तो लगता है कि मरना ही आज, ये अकेला ही मारने लगे, भारी बारे बाकी सारे असुर तो गए थे, असुर जो मार रहे थे बहुत फील कर रहे थे, आज तक जीत गए सारे असुर नायक भाग गए, लेकिन एक ही अकेला सबके ऊपर भारी पड़ गया, कईयों को पैर के नीचे मार डाला, और अभी तो इंद्र को बाएं हाथ से गदा, अपने इंद्र की गदा उनको फेंका, तो अपना गदा नहीं था, वृद्धासुर के पास अपना अस्त्र था, वो अपना अस्त्र नहीं चलाए, इंद्र के चलाए हुआ उन्हीं के ही गोली उन्हीं के बंधक उनको फेंका, और इसी में इंद्र होकर बैठे, और जो अपना चलाएगा तो क्या होगा, वो जो त्रिशूल लेकर बैठा था इंद्र ने वृद्धासुर ने उस शूल को देख रहा था, बोला बाप रे बाप क्या करेगा, लेकिन पीछे से सारे देवता समाज पीछे हैं, पीछे जाने से शर्म है, आगे जाने से मरम है, अब क्या तो इंद्र ने बोले जो हुआ इष्ट स्मरण करके सामने जा करके पृष्ठ देह से बिल्कुल वृद्धासुर के सामने खड़ा हो गया, तो वृद्धासुर आंख खोल करके देखा इंद्र, देखा बिल्कुल बिल्कुल पैर से ऊपर एक नीचे, फिर ऊपर से नीचे, ऊपर से देखा, देख करके इतने तिलमिला उठा इंद्र के बोल खोल कर बोला, अरे तू ही इंद्र है, बेशरम कहीं के तू निर्लज, आपको इंद्र देवता कहने के शर्म नहीं आता तुझे? मेरे भाई इतने बड़े उच्च कोटि के ब्राह्मण था, कितने सदाचारी जागृत ब्राह्मण था, किसी को अहित नहीं कर रहा था, ब्रह्मा जी के कहने पर तू आकर के उनके पैर पकड़ पकड़ करके बहुत रोध हो करके सारे देवताओं ने प्लीज प्लीज करके अपने को आचार्य पद में, गुरु पद में वरण किया, किया था इंद्र चुप, सारे देवता चुप किए थे, खुद उनके पैर पकड़ करके मांग मूंग करके उनका अपने देवता गुरु पद में वरण किया। वो बेचारे बड़े ब्राह्मण थे, पुरोहित काम करना मना ही कर रहे थे, वो चाहते नहीं थे, लेकिन आप लोग इतने पैर पकड़े, इतने विनती किए, आरती किए, वो बेचारे ना चाहते हुए आपने कृपा करने के लिए मैंने आउट ऑफ द वे जाकर के आपको हेल्प करने के लिए आपको सिखाए, ये नारायण के वचन सिखा दिए, इतने बड़े यज्ञ किए, जिनके साधन जिनके शक्ति के प्रभाव से आज त्रिलोक आपने घर संपत्ति वापस पाया ना नहीं, रे बेशरम कहीं के अभी कुछ ही दिन नहीं हुआ अपने सारे संपत्ति के भिखारी तरह सुनते जो वापस पाया, जिनके सहायता के कारण जिनके प्रभाव के कारण आप इतने देवत्व देवराज पदवी प्राप्त पाया, इतने नमक खराब इतने बेईमान है, उन्हीं के गला काट डालो, उन्हीं के गला काट डालो, तो और गुस्सा होते हैं। तू केवल ब्रह्म हत्यारा नहीं है, एक तो एक उच्च कोटि के अति साधु संपन्न जाकी ब्राह्मणों को तो हत्या किया, तू ब्रह्म हत्यारा है, खाली ब्रह्म हत्यारा नहीं है, तू मेरे भाई तुम्हारा है, मैं उनका भाई हूं, मैं भी तुष्टा के बेटा, तू मेरे भ्रातृ हंतारा है, मेरे भाई तुम्हारा है, और केवल भ्रातृ हत्यारा नहीं है, तू गुरु हत्यारा भी, तेरे गुरु को मारा है, मेरे भाई को मारा है, और ब्राह्मण ब्राह्मण ही मारा, तो तीन डबल पाप करा, तेरे को मैं क्या बदला लूं, तुझे अगर मार डालूं तेरे शरीर को तो कुत्ते सियार भी नहीं खाएंगे, बिल्ची इतने पापी इतने नीच, हमारा भी डाइजेशन नहीं होगा उसको, उनका इंडाइजेशन वो भी नहीं खाएंगे, क्या करूं वो भी नहीं खाएंगे, सड़ेगा उसको आग में जलाने के लिए आग भी नहीं पकड़ेगा, तुम इतने नीच है, इतने पापी शरीर है, आग भी नहीं पकड़ेगा, ना सियार कुत्ते खाएंगे ना आग पकड़ेगा, क्या करूं, मुझे लगता है टुकड़ा टुकड़ा करके फेंक देना पड़ेगा, ऐसे सड़ सड़ फिर जाए, मुझे तुम्हें सूर में तुझे टुकड़ा टुकड़ा करके बदला लूंगा, तू तीन डबल बदमाशी पाप किया है, तू मेरे सामने आज आया है, मैं तो कई दिन से ढूंढ रहा था मेरे भाई को मारने वाले को बता लूंगा, तू मेरे हत्यारा भ्रातृ हत्यारा है, गुरु हत्यारा है, ब्रह्म हत्यारा, आज तुझे मैं समुचित बदला लूंगा, बदला तो तुझे लूंगा है, तू मेरे सामने कहां बचकर जाएगा, तुझे तो मैं इसी से करूंगा, अगर तेरे जितने पार्टी के लोग खड़े हैं वो अगर तेरे सपोर्ट में उठ करके कुछ मार मुझे करेंगे तो आपको तो मारूंगा, उन लोग को ये सूर देख रहा ना सारे के बिहेडेड करूंगा, होलसेल में कत्ल करूंगा सबको, मैं इसी इंडिविजुअल नहीं मानता सबको, होलसेल में सबको गला काट डालूंगा, काट करके उनको क्या करूंगा, उनको सब मेरे हमारा सब देवता होते हैं भैरव भूत प्रेत, उनको बलि चढ़ाऊंगा, उनको बलि चढ़ाऊंगा, उनको दूंगा वो उनके सर को लेकर फुटबॉल की तरह खेलेंगे और रक्त कुछ पिएंगे, रक्त पिएंगे फुटबॉल खेलेंगे उनके सर, और आपका तो सर कहीं काम के नहीं है, सर भी कुछ काम के नहीं, रक्त भी कुछ काम नहीं, किसी काम के नहीं, इतने नीच पापी तो तुझे इस प्रकार करूंगा, इस प्रकार उनको कह करके कहते हैं कि इंद्र ये तो मैं करने वाला हूं, लेकिन अगर तेरे अंदर बुद्धि आया, मैं जानता हूं तू सोचता मुझे पता नहीं, मुझे पता है, मुझे पता है मेरे प्रभु ने तुझे मेरे मृत्यु के उपाय बता दिए हैं, तू सोचता है कि सीक्रेट नॉलेज मैं मिला हूं किसी को नहीं बताऊंगा, तू इतना मत समझ, मुझे पता है, मुझे पता है कि मेरे प्रभु ने तुझे उपाय बता दिए हैं, और इस उपाय के कारण तू ये वज्र लेकर आया है, वज्र के बारे में सारे बोल मुझे पता है, अगर तू वज्र चलाएगा मेरा मृत्यु हो जाएगा, ये भी हो जाए, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, इस काम में हो जाए तो मेरा शरीर में तो कई करोड़ों टन मांस पड़ा है, कई करोड़ों टन, वो जितने समुचे सियार कुत्ता है उनका कई सालों तक भोजन होगा, बेचारे मैं उनको दे दूंगा मेरे शरीर खाने के लिए, वो खाएंगे और मैं तो सीधा जाऊंगा मेरे गंतव्य स्थान। इस प्रकार इंद्र और देवता बेचारे चुपचाप खड़े हैं, मार नहीं रहे, ना आगे जा रहे, ना पीछे जा रहे, ना लड़ रहे, ना किच कर रहे, बिल्कुल ऐसे पांच कंडीशन में खड़े हैं। और वृतासुर सामने उनको गाली दे कर किस प्रकार बात कह रहा है, आगे क्या घटना हो रहा है, क्या चर्चा हो रही है। हरे कृष्ण।